بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان عوامی تحریک اور ادارے منہاج القرآن کے سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی پاکستان واپسی۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ لاہور میں ادارہ منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ کے سامنے سے بیریئر اور رکاوٹیں ہٹانے کی پولیس کی کاروائی اور تصادم میں 9 افراد کے مارے جانے کے بعد 23 جون کو علامہ طاہر القادری کا طیارہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوا۔ اس درمیان اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کے چاہنے والوں اور پاکستان عوامی تحریک کے ہزاروں کارکن پہنچ چکے تھے۔ حکومت نے طیارے کو اسلام آباد میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور طیارہ لاہور پہنچایا گیا، جہاں چند گھنٹے کے مذاکرات کے بعد سر انجام علامہ طاہر القادری گورنر پنجاب کے ساتھ طیارے سے باہر آئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس بار انقلاب کامیاب ہونے کے بعد ہی وہ پاکستان سے جائیں گے۔ اس درمیان پاکستان کے اکثر سیاسی و صحافتی حلقوں نے ادارہ منہاج القرآن کے اطراف سے حفاظتی رکاوٹیں ہٹانے کے لیے پولیس کی کارروائی کے طریقہ کار سے متعلق بہت سے سوال اٹھائے ہیں۔ مثلا یہ کہ کارروائی کے لیے رات کے 2 بجے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ البتہ بعض حضرات نے منہاج القرآن کے کارکنوں کی مزاحمت پر بھی اعتراض کیا ہے کہ اگر وہ مزاحمت نہ کرتے تو یہ سانحہ رونما نہ ہوتا۔ لیکن سب سے اہم سوال وزیر اعلیٰ پنجاب کی لاعلمی سے متعلق اٹھایا گیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لاہور میں پولیس نے اتنی بڑی کارروائی کا فیصلہ کر لیا، اس پر عمل بھی ہو گیا اور اس عمل کے دوران 9 قیمتی جانیں چلی گئیں، بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ علامہ طاہر القادری کے طیارے کو اسلام آباد میں اترنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اگرچہ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکورٹی خدشے کے پیش نظر خود ان کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے کارکن یہ استدلال تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کی جائے گی اور علامہ طاہر القادری کی تحریک انقلاب کا بھی آج کے پروگرام میں جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں اسلام آباد سے شریک کیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر ظفر علی شاہ کو، کراچی سے پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی رہنما علی اوسط شرکت کریں گے، اور لندن اسٹوڈیو سے پروگرام میں شریک کیا جائے گا برصغیر کے ممتاز دانشور پروفیسر محمد عارف کو۔ تو چلتے ہیں اسلام آباد جہاں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ جی شاہ صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ڈاکٹر
شاہ صاحب، یہ لاہور ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے بعد علامہ طاہر القادری کی جب واپسی ہوئی ہے تو ان کے طیارے کو اسلام آباد اترنے کی اجازت نہ دے کر لاہور کیوں بھیجا گیا؟
دیکھیں، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جناب، جیسے آپ کو علم ہے کہ پاکستان پہلے ہی ایک پچھلے 10-12 سال سے ٹیررزم کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کو اور اس کے تمام اداروں کو اور امپورٹنٹ جو پلیسز ہیں پاکستان۔
جی علی اوسط صاحب، کراچی چلتے ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے رکن علی اوسط صاحب۔ جی علی اوسط صاحب، السلام علیکم۔ گویا کہ علی اوسط صاحب سے بھی رابطہ۔
جی وعلیکم السلام۔ جی
علی اوسط صاحب، جمعرات کو پاکستان عوامی تحریک نے ایک اجلاس بلایا ہے، کتنی سیاسی جماعتوں نے اس اجلاس میں شرکت کی آمادگی ظاہر کی ہے اور اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے؟
جی دیکھیں، یہ جہاں تک ایجنڈے کی بات ہے تو ایجنڈا بہت واضح ہے کہ پاکستان میں جو گھسا پٹا کرپٹ نظام ہے اس کی تبدیلی کے لیے वो जमातें जो इसको समझती हैं कि ये पाकिस्तान में निज़ाम मुनासिब नहीं है, ये पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड किस्म की जमहूरियत चल रही है वो जमहूरियत नहीं है, उसकी तब्दीली के लिए जो लोग इस पर राजी हैं वो जमातों को दावत दी जा रही है और उन सब तक अपना पैगाम पहुंचाया जा रहा है। और इस हवाले से जो अब तक जिन जमातों से राबता हो चुका है, जो जैसे कि सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने पहले ही इस अलाइंस में शिरकत का इजहार कर दिया और लंदन में बाकायदा इन्होंने 10 नुकाती एजेंडे पे हिमायत का इजहार किया है। साथ ही साथ अब जो जिन जमातों के साथ राबता है उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसके अलावा मजलिस वहदत मुस्लिमीन है, और इसके अलावा कई और जमातें, शेख रशीद साहब की अवामी मुस्लिम लीग है और दीगर कई जमातों से राबता मुसलसल जारी है। और पहले ही डॉक्टर तहल कादरी साहब ये बता चुके थे और ये कह चुके थे कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मैं सियासी तौर पे लोगों से रवाबित करूँगा और अपने पैगाम को पहुँचाऊँगा और उनसे हिमायत हासिल करूँगा, और ये उसी की एक कड़ी है जो इस वक्त जमरात को वो इजलास होने जा रहा है।
जी अली अफसर साहब,
जी
आपने इत्तेहाद की बात की, तो क्या कोई इत्तेहाद कायम हो चुका है? पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत में कोई इत्तेहाद आपने कायम कर लिया है?
इस वक्त जो है वो तो दो पार्टी इत्तेहाद तो कायम हो चुका है,
जी
यानी एक मुस्लिम लीग कायद आज़म और पाकिस्तान अवामी तहरीक।
जी
जी मैंने कहा आपसे कि इस वक्त तो दो पार्टी इत्तेहाद तो ऑलरेडी कायम हो चुका है, जिसका अकॉर्ड पे साइन जो है लंदन में
जी जी
चौधरी शुजात और परवेज इलाही कर चुके हैं, लिहाजा ये मुस्लिम लीग कायद आज़म तो इस इत्तेहाद में ऑलरेडी शामिल हो चुकी है। अब फर्दर उन और जमातों को इसमें दावत दी जा रही है कि जो वो समझती हैं कि हमारा एजेंडा बिल्कुल अवामी एजेंडा है और पाकिस्तान के मुफाद में है, लिहाजा अब उन्हें दावत दी जा रही है कि वो आएं और वो हमारे इस एजेंडे में हमारे साथ शरीक हों और जद्दोजहद करें।
जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आपने दावत दी होगी, उसका जवाब क्या रहा है? इमरान खान साहब की जमात,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रवाबित तो हैं, राबता है, लेकिन अभी उनका जवाब बाकायदा भरपूर तरीके से उस तरह नहीं आया। अलायंस में वो तो पहले इमरान खान साहब जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि हम डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन ये कि फ़िलहाल हम अलायंस का हिस्सा या इत्तेहाद का हिस्सा फ़िलहाल हम नहीं बनेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज ही बल्कि कल इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है कि वो बल्कि आज कि 1 माह की उन्होंने मोहलत दी है, आखिरी 1 माह की मोहलत उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दी है, नवाज शरीफ लीग जिसको मैं अब गुल्लू लीग कहता हूँ, गुल्लू लीग को दी है कि वो अब 1 माह के अंदर अंदर अगर इनके 4 हलकों के मामलात को अगर हल नहीं करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि वो मोहलत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये गुल्लू लीग जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि ये मसाइल जो हैं ये हल हों, लिहाजा मैं ये समझता हूँ इम्कान कभी इम्कान है कि उसके बाद इंशाअल्लाह इमरान खान साहब भी ज़रूर बज़रूर इस अलायंस का हिस्सा बनेंगे, ये मेरा एक तज़िया है और मैं ये समझता हूँ। जी
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं लंदन, जहाँ बर्रे सग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब अल्लामा ताहिरुल कादरी के हंगामे के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उनके पाकिस्तान पहुंचने पर भी काफ़ी हंगामा रहा, इस्लामाबाद में भी पुलिस में और उनके अहल तरफदारों के दरमियान तसादुम की कैफियत रही, उनका तैयारा मोड़ दिया गया, लाहौर पहुंचाया गया, लाहौर में वो तैयारे से उतरने के लिए तैयार नहीं रहे, ये सब चीज़ें इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हम सवाल करना चाहते हैं आपसे, जुमेरात को जो इजलास पाकिस्तान आपके जो अवामी तहरीक ने जो बुलाया है, उस इजलास से आप कितने पुरउम्मीद हैं? आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल बन रहा है अल्लामा ताहिरुल कादरी की तहरीक के हवाले से, तो आपके ख्याल में क्या ये तहरीक, ये इजलास किसी मुअस्सर इनकलाबी तहरीक का सर आगाज साबित होगा?
मेरा तो ख्याल है कि वो तहरीकें और वो जमातें जो कि पाकिस्तान में बहबूद, तरक्की और सही डेमोक्रेसी चाहती हैं, वो इसमें शामिल होंगी। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उसमें MQM वालों ने भी कहा है कि वो शामिल होंगे, वो बड़ी जमात है वहाँ की, और कई जमातों ने, छोटी छोटी जमातों ने भी वादा किया है कि वो इसमें शामिल होंगी। और देखिए, पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं, और जितनी गुर्बत है और लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, खाने का नहीं है और बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कोई आदमी ऐसा हो जो खड़ा हो और उनकी नुमाइंदगी करे। ये जो इस वक्त की जो पार्लियामेंट है वो तो जागीरदारों और बड़े दौलतमंद लोगों की एक एक क्लब है, और वो अपने मफाद के लिए काम कर रही है, और इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो असल कादरी की तरफ देख रहे हैं कि पहली बार पाकिस्तान बनने के पहली बार एक आदमी जो है वो खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी है, इलेक्शन और डेमोक्रेसी एक चीज़ नहीं है, डेमोक्रेसी में तमाम तबकों की नुमाइंदगी होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ जागीरदार और दौलतमंद उसमें हो, उसके अंदर नुमाइंदे होना चाहिए, किसानों के उसमें नुमाइंदे होना चाहिए, मजदूरों के उसमें, टीचर्स के नुमाइंदे होना चाहिए उसमें, जर्नलिस्ट होना चाहिए, ऑफिस वर्कर्स होना चाहिए उसके अंदर, उसमें तमाम तबकों की नुमाइंदगी हो और सबको यह हक हो कि मुल्क के बारे में वो फैसला कर सकें। ये इन्होंने एक बहुत इनकलाबी बात की है कि और पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इसी तरह बचाया जा सकता है कि तमाम तबकों की नुमाइंदगी। 65 साल से एक तबका जो है वो हुकूमत कर रहा है, यानी 80% लोग जो हैं वो जागीरदार हैं, और 2% उनकी आबादी जो है वो 50% ज़मीनों पे कब्जा किए हुए हैं। वो इंतहाई करप्ट है, टैक्स नहीं देते हैं, कोई कानून जो बनाते हैं वो अपने मतलब के लिए बनाते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, आवाम की बहबूद पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते हैं, और हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। कभी मजहबी मुनाफरत फैला दी तो कभी लसानी झगड़े करा दिए तो कभी गैर मुल्की खतरे का निशानदेही की। एक मुसलसल 65 साल से 67 साल से ये सिलसिला चल रहा है। पहली बार असदुल कादरी साहब ने इसकी निशानदेही की और कहा कि अगर आवाम को अपने हुकूक हासिल करना है तो वो इस पार्लियामेंट के जरिए हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्लियामेंट तो आवाम की नुमाइंदा है ही नहीं है, ये तो नुमाइंदा है ख़ास तबके की। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, नज़रियाती कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है उन ताकतों में जो कि उसको बदस्तूर इस निज़ाम को जारी रखना चाहती हैं, और एक दूसरा तबका जो जो ताल्लुकादी के साथ है वो कहता है इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, ये फरसूदा निज़ाम है, ना ये पाकिस्तान को तरक्की दे सकता है और ना ही ये इसमें आवाम की कोई बहबूद हासिल की जा सकती है। तो इस निज़ाम को हटा करके एक नई पार्लियामेंट, एक नया तरीक़ेकार से लोगों को चुना जाए और वो इसके बारे में फैसला करें।
बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये मसला जो है,
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हम दोबारा आएंगे आपकी तरफ। सेनेटर जफर अली शाह साहब से राबिता दोबारा बरकरार हुआ है। जी जफर अली शाह साहब, कहा यह जा रहा है कि मॉडल टाउन में जो कार्रवाई की गई मिनहाजुल कुरान के ख़िलाफ़, वो भी, और इस्लामाबाद में जो ताहिरुल कादरी साहब के तैयारे को उतरने की इजाज़त नहीं दी गई, ये सब उस इनकलाब को रोकने की नाकाम कोशिशें हैं जो अल्लामा ताहिरुल कादरी पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इसके जवाब में?
मेहंदी साहब, अभी तक तो हमें ये नहीं समझ लगी कि कादरी साहब वो कौन सा इनकलाब जो है वो लाना चाहते हैं। वो खुद
बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अगर स्काइप में, तो मैं अपने साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि सेनेटर जफर अली शाह साहब से टेलीफोन पर राबिता कायम किया जाए ताकि उनकी पार्टी का नजरिया तो सामने आ जाए। जी अली औसत साहब, जनाब आप क्या कहते हैं कि हुकूमत का कहना यह है कि सिक्योरिटी खदशे के पेश नज़र अल्लामा ताहिरुल कादरी की हिफाजत के लिए उनके तैयारे को इस्लामाबाद के बजाय लाहौर भेजा गया?
मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ी मज़हका खेज बात और कोई हो ही नहीं सकती कि ये इतने बड़े हमदर्द हो गए डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कि उनकी सिक्योरिटी की ये परवाह करने लगे, जबकि चंद दिन पहले वो उनके घर के अंदर गोलियां चला चुके हैं, उनके सेक्रेटरीट पे धावा बोल चुके हैं और वहाँ उन्होंने एक पूरा मैदान जंग सजाया था। तो ये किस तरह हमदर्द हो सकते हैं और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी इंतकाम था और वो नहीं चाहते थे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अब मैं और हम सब लोग गुल्लू लीग कहते हैं, ये गुल्लू लीग कभी भी नहीं चाहती थी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी अमन के साथ इस्लामाबाद में कदम रंजा फरमाएं, और जब वो निकलेंगे तो फिर हजारों और फिर बाद में ये कारवान जब जीटी रोड से गुजरता तो लाखों की तादाद में लोग लाहौर तक उनके साथ हम सफर होते। लिहाजा वो ये कतई तौर पे इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लिहाजा इन्होंने तो ये समझें आपके तैयारे को हाईजैक किया। वो तैयारा जो लैंड करना था इस्लामाबाद में, उसको बजाय इस्लामाबाद में लैंड करने के पहले तो उन्होंने 12-13 चक्कर जो इस्लामाबाद के लगाए, जब कप्तान ने ये कहा कि फ्यूल बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहा है, तब जाके इन्होंने उसको ये कहा कि आप किसी भी सूरत इस्लामाबाद में लैंड नहीं कर सकते, आप इसको लाहौर की तरफ डाइवर्ट कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो जालिमाना जाबेराना ये काम है। कौन सी जमहूरियत है, किस जमहूरियत का नाम यह है कि किसी एक सियासी पार्टी का एक कायद एक रहबर अगर वो अपने मुल्क में आए तो उसके इस्तकबाल के लिए रुकावटें खड़ी की जाएं, उसके तैयारे को लैंड नहीं करना करने दिया जाए? ये कौन सी जमहूरियत है? ये तो अपने घर में बादशाहत इन्होंने कायम कर रखी है, ये बादशाहत का निज़ाम है जो इनके चंद लोगों के हाथों में इनके अजीज उकरबा इसके साथ हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो कुछ भी अगर लोग ये कहते हैं कि ये मैंडेट लेकर आए, मैं ये समझता हूँ कि ये जाली मैंडेट है, क्योंकि ना 62-63 पे अमल दरामद हुआ, ना किसी और शिकों पे, ना इलेक्शन कमीशन आई नहीं था वो। अब बाद में जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने शुरू में ये बात कही थी कि ये इलेक्शन कमीशन गैर आइनी बनाए, तो उस वक्त किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद के हालात और मामलात ने ये साबित किया। और इमरान खान साहब जो एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी पहली तकरीर में असेंबली में खड़े होकर ये बात कही कि हम उस वक्त नहीं समझे थे और डॉक्टर ताहिरुल कादरी उस वक्त ठीक कह रहे थे। तो ये कौन सी जमहूरियत है, ये जाली मैंडेट लेकर आए, ये लोगों के ऊपर सवार हैं और अपना जाबेराना और तहकुमाना ये एक निज़ाम कायम करना चाहते हैं। ये असल में ये राय विंड का निज़ाम कायम करना चाहते हैं, ये राय विंड ही हैं, ये इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ये अपने घर का अपने अपने ख़ानदान की बादशाहत चाहते हैं पाकिस्तान में। चंद हाली मवाली इनके साथ हैं जो रोज़ाना आकर के इनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं, बयानात देते हैं, लेकिन इनका असल में अवाम के मामला से अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जिद्दोजहद पिसे हुए तबके के लिए है, हमारी जद्दोजहद उन गरीब लोगों के लिए है जो यहाँ मुस्तकिल गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं, और एक ख़ास तबका मुसलसल अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। तो हम इसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी इस तहरीक का वो तमाम लोग और वो तमाम जमातें जो इस निज़ाम को करप्ट ज़ालिमाना निज़ाम समझती हैं, वो तमाम जमातें हमारे साथ शामिल होंगी, वो तमाम अफराद अवाम पाकिस्तान हमारे साथ शामिल होंगे, हम आवाज़ होंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में हकीकी निज़ाम हकीकी अवामी निज़ाम लेकर आएंगे, वो अवाम की हुकूमत कायम करेंगे, ना ये कि एक ख़ानदान की हुकूमत।
बहुत बहुत शुक्रिया जी सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब से टेलीफोन लाइन के ज़रिए राबता कायम किया गया है। जी सेनेटर साहब स्काइप में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए टेलीफोन लाइन के ज़रिए राबता कायम किया गया है आपसे। ये मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी और इस्लामाबाद से तैयारा लाहौर की तरफ मोड़ने के ताल्लुक से भी हुकूमत पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। और अभी आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई होगी अली औसत साहब की कि खुद अल्लामा ताहिरुल क़ादरी की जो पार्टी है उनका जो इदारा है उसके अरकान और उनके चाहने वाले हुकूमत की ये दलील मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिक्योरिटी खदशे की वजह से तैयारा लाहौर भेजा गया। सिक्योरिटी खदशा किसकी तरफ से था?
देखिए जी मैं साहब, आपका पहला सवाल ये है कि मॉडल टाउन के बारे में, मॉडल टाउन के बारे का जो वाक्य मिस है हुआ है, पहली बात तो ये है कि जो वो बेगुनाह चाहे थे उस पर मुझे, मेरी पार्टी को, मेरी क्यादत को मुकम्मल अफसोस है। और फिर उस वाक्य के बारे में एक जुडिशियल कमीशन जो कि जज ऑफ दी हाई कोर्ट है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी अदालत जो है उसके जज है, उनको मुकर्रर कर दिया गया है और वो तमाम मामलात को प्रो, और इसमें जो वजीर आला है पंजाब के, उन्होंने कैटेगरी डिनाई किया इस बात का कि इसमें पंजाब की पोलिटिकल पावर का या पंजाब के इकतदार आला का कोई इसमें दखल दरामद नहीं है। ये कहां से हुआ, कैसे हुआ?
टेलीफोन लाइन में भी प्रॉब्लम है ये। प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब, जनाब बताया जाता है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के चाहने वालों और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई थी। पुलिस से और वहाँ पर मौजूद लोगों के दरमियान तसादुम भी हुआ, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, पुलिस के बहुत से अहलकार ज़ख्मी हुए। हुकूमत का कहना यह है कि बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे जिन्हें कंट्रोल करना सिक्योरिटी के जो अहलकार थे उनके बस में नहीं था, उन्होंने जब कंट्रोल करना चाहा तो टकराव हो गया। तो इस बात का इम्कान तो बहरहाल हो सकता है कि उन्हीं में कुछ दहशतगर्द अनासिर भी शामिल हो जाएं और कुछ ऐसी कार्रवाइयां करें कि जिसका इल्ज़ाम बाद में फिर हुकूमत पे आए। जी खूब, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे। बताया गया है कि सेनेटर जफर अली शाह साहब से राबता बरकरार हो गया है। जी जफर अली शाह साहब, राबता आपसे मुनक़ता हो गया था, आप अपनी बात मुकम्मल करेंगे या मैं दूसरा सवाल करूँ आपसे? जी जान,
हेलो,
जी आपसे राबता मुनक़ता हो गया था, आप अपनी बात मुकम्मल करेंगे?
जी मैम, कर रहा था, मैं यही काम कर रहा हूँ कि रहेगी बात कादरी साहब के इंकलाब की, वो इंकलाब की आज तक पाकिस्तान के अवाम को समझ नहीं लगी कि वो कौन, चूंकि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पर पूरी कौम और पूरी मुल्क की तमाम पोलिटिकल पार्टी उसके ताबे काम कर रही है। इसलिए ये कहना कि इंकलाब बड़ी खुशी से, ये उनका राइट है, लेकिन बताएं तो सही वो इंकलाब कौन सा, इंकलाब फ्रांस की तरह, इंकलाब रूस की तरह, इंकलाब मिस्र की तरह, इंकलाब ईरान की तरह, किस किस्म का इंकलाब और किस तरीके से लाना चाहते हैं? क्या मुल्क की फौज को इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं? कौन सा इंकलाब किस तरीके से आएगा, ताकि ये आज तक पाकिस्तान की आवाम नहीं समझ सके कि ये किस इंकलाब की बात कर रहे हैं और उसका मैकेनिज्म क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हाँ, ये उनका राइट है कि मौजूदा हुकूमत हो या कोई हुकूमत हो, उसको तब्दील करने के लिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, पाकिस्तान के आईन में वोट के जरिए हुकूमत को तब्दील किया जाता है, और वोट में जो शेड्यूल इलेक्शन होते हैं उस पर आकर अगर किसी की पार्टी जीत जाती है तो दूसरी पार्टी अगर इक्तदार में हो तो घर चली जाती है। लेकिन ये इंकलाब जिसका ये बार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छी बात है, हो जाएगा, बताएं तो सही कि ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होगी, आप गली में या सड़क पर या बेहतर मार्ग पर निश्चित मार्ग पर खड़े होकर इंतकाल इंतजार चाहते हैं, पाकिस्तान की हर फोर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह आपने एयरपोर्ट पर आकर आवाजें दी कि आए मुझे मिलिट्री लेकर जाए, आए।
जी अली औसा साहब, जनाब सेनेटर जफर अली शाह साहब से टेलीफोन पर रबता दोबारा मुनक़ता हो गया। बहरहाल उन्होंने एक इशारा किया है कि अल्लामा ताहिरुल क़ादरी का किस किस्म का इनकलाब लाना चाहते हैं, किसके ज़रिए, फ़ौज का नाम लिया उन्होंने। इससे पहले भी जब अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने तहरीक शुरू की थी तो बाज़ हलकों की तरफ से इशारे किनाए में ये बात कही जाती रही है कि वो कुछ खुफिया ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं, बाज ने खुल के कहा कि वो फौज को लाना चाहते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि फौज से क्या उनकी तालमेल बहुत अच्छी है?
मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब का ये वाज़े मौक़िफ़ है कि वो वाज़े मौक़िफ़ है और उन्होंने बार बार इसको दोहराया है कि हम किसी भी सूरत माशाल्लाह की हिमायत नहीं करते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर तब्दीली ज़रूर चाहते हैं लेकिन हम माशाल्लाह की हिमायत नहीं करते हैं। जहाँ तक ज़फ़र अली शाह साहब कह रहे थे तो मैं इनको ये बात बताऊँ, जवाब दूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा, यूँ समझ लें एक मिसाल कि एक ऐसी जगह जहाँ एक ही दरवाज़ा है, एक ऐसा प्रेमिसेस या एक ऐसा घर या जिसको भी आप इसको समझ लें कि उसमें एक ही दरवाज़ा है दाखिल होने के लिए और उस दरवाज़े पे गंदगी के ढेर लगे हुए हों, इंतहाई गंदगी फैली हुई हो, कीचड़ का गंदगी और यानी कोई इसका यानी कहना चाहिए कि हिसाब ही ना हो गंदगी का, तो उस गंदगी के अंदर से अगर कोई गुजर के उस घर में दाखिल होगा तो वो ज़ाहिर उस घर को भी गंदा करेगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो असेंबली है ये एक मुकद्दस इदारा है, पाकिस्तान का जमहूरियत में असेंबली एक मुकद्दस इदारा होती है, लेकिन उस असेंबली के अंदर 62-63 को का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर गंदगी का ढेर लगा दिया गया और उसके ऊपर से लोग चढ़ के उस असेंबली में दाखिल हुए हैं जो गंदगी का अपने साथ ढेर लेके अंदर गए, वो किस तरह तब्दीली ला सकते हैं? उन्होंने तो उस मुकद्दस इदारे को ही जो है वो गंद से भर दिया है, उसको गंदा कर दिया है, लिहाजा हम ये गंद साफ करना चाहते हैं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते और ना ही इस बात के हम कायल हैं कि उस दरवाजे के ऊपर से एक पैसेज निकाल दिया जाए छोटा सा और उसके ऊपर से लोग आना जाना करें, और ये यही चाहते हैं कि मुख्तलिफ हीलों बहानों से पैसेज इनको मिलता रहे और ये जमहूरियत 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 का राग अलाप के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें। मैं ये इनसे कहूँगा कि पाकिस्तान में ये सो कॉल्ड ये कहते हैं 42%, जबकि मैं समझता हूँ कि शायद सही मानों में 25% भी लोगों ने वोट नहीं डाला होगा इस इलेक्शन में, लेकिन ये अपना बना के और ये फॉल्स तरीके से बना बनू के इन्होंने कहा कि 42% वोट, तो मैं ये कहूँगा कि 42% के बाद जो कुछ रह गया है 58% वो लोग कहाँ जाएं? वो 58% की तो नुमाइंदगी ये नहीं कर रहे, 58% तो इनके साथ नहीं है, यानी पूरे निज़ाम के साथ नहीं है 58%, हम उस 58% को भी हम शामिल करके हम उसकी आवाज़ बन रहे हैं, क्योंकि ये घिसा पिटा ये मखसूस तबके का निज़ाम है जो वही घूम फिर के आते हैं, वही ख़ानदान आते हैं जो आकर के पाकिस्तान में हुक्मरानी करते हैं, और ये जो कि इन्होंने ही अगर फिगर दिए कि 42% अगर वोट पड़े थे तो वो 58% कहाँ खड़े हैं वो बेचारे सारे वोटर, वो 58% तो इनके साथ नहीं है, जबकि उस 42% पे भी ऑपरेशन किया जाए तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो 42% में भी कितने उसके आधे शायद निकले जो जो सही होंगे और बाकी सब जाली वोट था, बाकी सारा जाली मैंडेट था। तो ये किस जमहूरियत की बात करते हैं, ये कौन से मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं? ये कि एक बैरियर हटाने के लिए हजारों सैकड़ों की तादाद में पुलिस लेकर के यलगार कर दिया रात, मैं तो ये कहूँगा रात गए जो नकब जनी की जाती है वो नकब जन करते हैं, डाकू करते हैं, रात गए पिछले पैर आकर के डाका डालते हैं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू हैं इस वक्त ये नवाज शरीफ, इनको मैं जालिम आजम जालिम आला कातिल आजम कातिल आला कहता हूँ, इन्होंने शबखून मारा, इन्होंने डकैती मारने की कोशिश की, रात के पिछले पैर कौन सा वक्त था कि आकर के बैरियर हटाएं और वो इतनी बड़ी नफरी लेकर सुबह के उजाले में आते बात करते, जबकि आज दोबारा बैरियर लगाने का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और लगा दिया है, तो अब उनका वो स्टैंड कहाँ खड़ा है कि वो बैरियर नाजायज थे बैरियर गैर कानूनी थे, अब वो कहाँ खड़े हैं जब दोबारा बैरियर लगाने की हुकूमत पंजाब ने इजाजत दे दी? तो मैं ये समझता हूँ ये सारा का सारा मामला एक सियासी है, इन्होंने जो है सियासी तौर पे अपने आप को थ्रेट समझा है डॉक्टर ताहिरुल कादरी को, वो देख रहे हैं मुसलसल कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उनका पैगाम बड़ी तेजी के साथ आवाम में और खवास में और जमातों में फैल रहा है। वो उसको रोकना चाहते हैं, वो उसको दबाना चाहते हैं, वो जुल्म और ज्यादती करके लोगों को हिरासा करना चाहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आलिया
अवसर
साहब।
और कुछ लोग डर के दब के बैठ जाएं, लेकिन
बहुत बहुत शुक्रिया आलिया अवसर साहब। दोबारा अगर वक्त हुआ तो हम दोबारा आएंगे आपकी तरफ।
पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है
जी, सेनेटर जफर अली से।
अब इंशाल्लाह ताला बगैर इनकलाब के हम इंशाल्लाह अपने घरों को नहीं जाएंगे।
जी सेनेटर साहब, अली अवसर साहब की गुफ्तगु आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इनकलाब के बारे में उनका कहना यह है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी पाकिस्तान से बदउनवानी दूर करके साफ सुथरा हकीकी जमहूरी निज़ाम लाना चाहते हैं।
आपकी आवाज कट के आ रही है, लेकिन चलो जो कुछ मैं समझा हूँ मैं जवाब देता हूँ उनका। वो इतराज की क्या बात करते हैं, तो उन्होंने इतराज ये किया कि मौजूदा निजाम जो है, अगर मौजूदा हुकूमत है इसको 52% की हमायत भी हासिल नहीं है। क्या हम मुझे कादरी साहब ये बता सकेंगे कि उनको या उनकी जमात को जीरो
जी जी प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब
फरमाइए।
जनाब ये जो जिस इनकलाब की बात हो रही है, साफ सुथरा बदउनवानी से पाक जमहूरी हकीकी जमहूरी निज़ाम लाने की बात पाकिस्तान में, ये तहरीक तो इंडिया में अगर आप देखें तो अन्ना हज़ारे ने एक तहरीक चलाई थी बदउनवानी के ख़िलाफ़, और बहुत फैली वो, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ फिर वो तहरीक बैठ गई। तो ऐसी किसी तहरीक का पाकिस्तान में क्या हशर होगा?
देखिए पिछली मरतबा, इस बार नहीं बल्कि पिछली मरतबा जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब यहाँ आए थे तो मुझे शर्फ़ मुलाकात उनसे हासिल हुई थी और मैंने तमाम कई इश्यूज उनसे डिस्कस भी किए थे। एक तो बात यह है कि हज़ारे की जो थी मूवमेंट वो एक सोशल मूवमेंट थी, वो सियासी मूवमेंट नहीं थी कि हम हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं, हम नया निज़ाम लाना चाहते हैं। वो तो सिर्फ चाहते थे कि करप्शन कम हो और जैसा निज़ाम है वो चलता रहे। यहाँ तो पूरे निज़ाम को ही तब्दील करने की बात हो रही है, यहाँ तो ये पार्लियामेंट ही तब्दील करने की बात हो रही है। और देखिए एक बात है कि जब भी ये जो नवाज गवर्नमेंट जो है वो ताहिरुल कादरी से खौफजदा है, बेइंतहा खौफजदा है, और इसीलिए उन्होंने उसको उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया और उनके लोगों को टेररइज करने के लिए, खौफजदा करने के लिए दहशत वो वहाँ पर उन्होंने गोली चलवाई। कोई पुलिस दुनिया की इतने लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलाएगी जब तक कि उसको ऊपर से हुक्म आया हो। ये कहना कि अब हम कमीशन कायम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब फजूल बातें हैं। असल मसला ये है कि इतनी गोलियां, 90 लोगों के गोलियां लगी हैं, बहुत सी औरतें जो है वो बिल्कुल निहत्थी थी उनको गोलियां लगी हैं, और गुंडे जो थे उस पुलिस को की रहनुमाई कर रहे थे। तो ये सब मसला जो है बगैर ऊपर से प्लानिंग किए हुए और ऊपर से हुक्म आए हुए नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आप याद रखें कि जब भी कोई इनकलाब की बात करता है या खड़ा होता है तो वो ताकतें जिनके हाथ में मारात होती हैं, जिनके हाथ में दौलत होती है, जिन्होंने करप्शन के जरिए दौलत हासिल कर ली है, वो इस चीज़ को, इन चीज़ों को आसानी से देने पर तैयार नहीं होते हैं, और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो उसको अपने हाथ में रखें, और उसके लिए वो जुल्म करते हैं, उसके लिए वो प्लेन को भी नहीं उनके लैंड करने की दी, गिरफ्तारियां भी करते हैं, लोगों को जेल में डालते हैं। ये सारा जो मसला है ये हर ठीक को वो इस्तेमाल करेंगे इसलिए। अच्छा, और दूसरी बात भी आप मैं बता दूं कि जैसे जैसे इनकलाब का मसला आगे बढ़ेगा, तमाम रुजत पसंद जमातें उनके बाहमी इख्तलाफात के बावजूद वो सब इकट्ठा हो जाएंगी ताहिरुल कादरी के खिलाफ। ये हमेशा हुआ है तारीख में जो है कि तमाम रुजत पसंद ताकतें जो कि इनके मफादात वाबस्ता हैं इन हुकूमत के साथ, वो इकट्ठा हो जाएंगी ताहिरुल कादरी की तहरीक के खिलाफ। तीसरी बात जो होगी मैं अभी निशानदेही कर देता हूँ कि अब जो है वहाँ का जो मीडिया है पाकिस्तान का, अब वो ये बात नहीं करेगा कि क्या ताहिरुल कादरी कहना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं आवाम के लिए। वो करेगा कि आपको पैसे कहाँ से मिले, आप कनाडा में क्यों रहे, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। ये आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये मुसलसल ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, और यही ये हुकूमत जो है इस्तेमाल कर रही है। और मैं तो देख रहा था जियो टीवी, उस पर वही बात शुरू हो गई जिसका मैंने अभी जिसकी निशानदेही की है।
देखिए प्रोफेसर साहब, देखिए आइंदा क्या होगा, जुमेरात के बाद मतलब क्या रुख अख्तियार करती है ये तहरीक और उसके बाद इसका रद्द अमल क्या होगा, वो सब अपनी जगह पर है, इस पर बाद में गुफ्तगू की जाएगी। फिलहाल आप ये देखें कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ या जो कुछ लाहौर में हुआ, मॉडल टाउन का सानिया, कोई भी काम अगर कोई करता है तो ये देखा जाता है कि उससे उसको फ़ायदा क्या पहुँचेगा, क्या उसने हासिल करना चाहा। ये जो जो भी मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ, इससे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और आपके क्या नाम है हुक्मरान जमात को, हुकूमत को बदनामी और एतराज़ात के अलावा तो कुछ नहीं मिला। तो क्या आप ये नहीं मुमकिन है कि इन तमाम वाकयात में कुछ ऐसे अनासिर का हाथ रहा हो जो हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बही खान नहीं है?
मैं नहीं समझता ये बात जो है, क्योंकि शुरू में आप सनाउल्ला जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे वो ये गोली चलने को सपोर्ट कर रहे थे, सही हुआ जो हुआ वहां पर। इनके कई लोग जो थे पहले आए टीवी के ऊपर, कहा कि ये सही हुआ, पर वो बाद में जब उनको पता चला कि दुनिया सारे पाकिस्तान के अवाम जो है वो इसके खिलाफ हैं और ये दहशतगर्दी जो उन्होंने फैलाई वहां पर वो उसके खिलाफ है, दरिंदगी जो उन्होंने वहां कायम की उसके खिलाफ है, तब इन्होंने करवट बदला और तब्दील अपनी पॉलिसी तब्दील की। लेकिन मैं बताऊं, ये सारा मसला जो उन्होंने किया है कि वो ताहिरुल क़ाज़ी से खौफजदा हैं और इसके लिए जो उन्होंने वहां गोलियां चलाईं उसका मतलब यह था कि इनके सपोर्टर्स को इतना खौफजदा कर दो कि वो ताहिरुल क़ाज़ी का साथ छोड़ दें, उनके साथ न चल पाए और आगे ना बढ़ पाए। लेकिन ये जो इनका नारा है ताहिरुल क़ाज़ी साहब का, वो इतना जबरदस्त और इतना अपीलिंग है कि लाखों लोग उनके साथ आएंगे इस बात के ऊपर जो है, क्योंकि 65 साल से जब से पाकिस्तान बना है लोट खसोट हो रही है वहां पर। कोई अवामी नुमाइंदा उसे ये बात नहीं कही जो ताहिरुल क़ाज़ी साहब आज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो हो रहा है ये सब सोची समझी स्कीम के जरिए ये नवाज हुकूमत ने किया उनके साथ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अली औसा साहब। हमारे पास 2 मिनट का वक्त रह गया है, इस 2 मिनट में आप ये एक सवाल जो खुद पाकिस्तान के अखबारात ने इसको उठाया है और उसकी तरफ इशारा किया है कि इमरान खान साहब ने इससे पहले खुल के अल्लामा ताहिरुल क़ादरी की तहरीक का साथ दिया था, लेकिन इस बार उनके अंदर कुछ हिचकिचाहट सी है, वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया लोगों ने कि इमरान खान साहब महसूस ये कर रहे हैं कि इस बार भी उनकी तहरीक कामयाब नहीं होगी। 2 मिनट का वक्त हमारे पास।
नहीं, मैं इसका फौरी जवाब ये दूंगा कि मेरे ख्याल में ये गलत मालूमात है। खुल के तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने साथ नहीं दिया था और आज भी उन्होंने यही कहा, ऐलान किया, जो कि मैं पहले कह चुका हूं कि उन्होंने फरमाया कि हम ताहिरुल क़ाज़ी साहब के साथ खड़े हैं लेकिन अभी हम किसी इत्तेहाद किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। 2-3 बातों का मैं आपको जवाब दूँ जो आपने सवाल उठाया था। पहली बात तो ये कि अगर इससे कोई और फ़ायदा उठाना चाहता था, अगर ये जो कुछ मॉडल टाउन का सानिया हुआ है, तब भी जिम्मेदारी वहाँ के उस जालिम आला पे आती है कि वो 12 घंटे तक जो है वो बेखबर रहे कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। अगर उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश थी तब भी उनको जाग जाना चाहिए था और आकर के रोक लेना चाहिए था। तो दोनों सूरतों में जो है वो जिम्मेदारी जो है वो जालिम आला वजीर आला के ऊपर बनती है, किसी भी सूरत वो इससे फरार इख्तियार नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जाहिर है ये बात सब जानते हैं, मशहूर है कि जनाब वो सुबह 6 बजे से जो है दफ्तर और दफ्तरी उमूर को अंजाम देते हैं जनाब जालिम आला शहबाज शरीफ साहब। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो 12 घंटे तक बेखबर रहे? इसका मतलब ये है कि सब कुछ उनकी तरफ से था और उनके हुक्म के मुताबिक हो रहा था। इसमें एक और नुक्ता मैं आपको बताता चलूं कि ताहिरुल क़ादरी साहब वो वाइट शख्सियत हैं जिन्होंने 6-7 साल पहले ये फतवा दिया था कि पाकिस्तान में ये जो तालिबान और इस तरह के दहशतगर्द हैं ये असल में ख़वारिज हैं, ये ख़वारिज हैं, और उन्होंने एक जख़ीम किताब इस पर लिखी थी, फतवे पे मुश्तमिल है, और उन्होंने फौज को उस वक्त भी कहा था कि ऑपरेशन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चूंकि ये बात अज़हर मिन शम्स है, लोग जानते हैं, کہ یہ مسلم لیگ نون نواز شریف جو ہیں یہ دہشت گردوں کے ساتھ رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ علی اوسط صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ پروفیسر محمد عارف صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، اور سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب سے معذرت خواہ کہ ٹیلی فون لائن میں گڑبڑ کی وجہ سے ان کی بات مکمل نہیں ہو سکی۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@theRateOfSaharaTV.ir۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیے۔